मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 14 मई 2019 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इनका नाम है हितेश कुमार चंद्रा, आप कोरबा छत्तीसगढ़ से हैं। आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आपसे कृषि में नए उपाय इस विषय पर बात करने जा रहा हूं और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अलग ढंग से मैं बात करूंगा। लेकिन आइए पहले एक दो जो दूसरी खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। रेडियो न्यूज में आपने सुना होगा चीन और अमेरिका के बीच में किस तरीके से जो ट्रेड वार है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, एक दूसरे को धमकियां भी दी जाने लगी हैं और सच पूछिए तो अब इस वार को लेकर के दुनिया थोड़ी सी चिंतित भी है। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था तो अमेरिका एक ब्लॉक में चला गया था, कैपिटलिस्ट ग्रुप बना लिया था उसने, और रशिया दूसरे ब्लॉक में था जिसे आप कम्युनिस्ट ग्रुप कह लीजिए। तो इन दोनों के बीच में एक वार की शुरुआत हुई थी जिसे हम कोल्ड वार कहते हैं, शीत युद्ध। बकायदे इतिहास का हिस्सा है और सिलेबस में आपके है भी, सीधे सीधे नहीं है लेकिन आपने जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़िएगा कोल्ड वार। चलिए, लिबरलाइजेशन 1990 तक आते आते जैसे ही रशिया बिखरा वो कोल्ड वार खत्म हो गया, तो अब उस कोल्ड वार की जगह आप यूं कह लीजिए कि ट्रेड वार ले रहा है और आप देखिए कि धीरे धीरे ये फैलता चला जा रहा है। भारत पर भी इसका असर होना शुरू हो गया है। भारत ने भी कुछ चीजों को लेकर के, कुछ चीजों के शुल्क को लेकर के आपत्ति उठाई है और उसने भी कुछ बढ़ाए हैं। यहां कल के न्यूज में आपने एक बात जरूर देखा होगा जो यहां बहुत रिलेवेंट है और वो ये है, देखिए जब भी आप इस तरह की घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और खासकर अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं सुनते हैं तो अगर उसमें कहीं भारत का संदर्भ आता है तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए, यानी ये आपके बहुत काम की चीज है, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। उस न्यूज में एक संदर्भ आया कि अमेरिका की लगभग 200 कंपनी ने इस बात पर विचार करना शुरू कर दिया है कि वो चीन से अपनी कंपनियां हटा लें, चीन से अपने ऑफिसेज बंद करें। और भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो अपने ऑफिसेज ले जाएंगे कहां, तो वो उसे भारत में शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। और भारत में शिफ्ट होने का मतलब है ये भारत के लिए बहुत फायदे का सौदा होगा, क्योंकि जब वो कंपनियां यहां आएंगी तो यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, मतलब और भी दूसरी चीजों पे आप कह लीजिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी। अब आप देखिए कि अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वार की स्थिति है लेकिन भारत को ये संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक उसका छोटा सा हिस्सा है। क्योंकि और न्यूज में ही आपने सुना होगा कि कुछ अर्थशास्त्री ये मान रहे हैं कि अगर ये ट्रेड वार बढ़ता चला गया तो हो सकता है कि कुछ देशों को थोड़े समय के लिए कुछ फायदा हो जाए लेकिन लॉन्ग टर्म पर तो ये बहुत ही नुकसानदेह होगा। दोस्तों, मैं आज आपसे एक नए तरह के टॉपिक पर बात कर रहा हूं अब नेक्स्ट पॉइंट के तहत, और वह है जलवायु निवेश योजना। जलवायु निवेश योजना शायद आपने ये न सुना हो। देखिए, अगर आप इस afeis.com के इस वेबसाइट का कोई कंट्रीब्यूशन अपनी प्रिपरेशन में मान सकते हैं तो वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दो है। नंबर वन कि आपको इतने सारे न्यूज़पेपर्स की चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं ये सारी एक जगह प्रोवाइड की जाती है, अदरवाइज वो आपसे मिस हो सकती है, मिस होंगी ही, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। अब मतलब अगर आप लोग महसूस करें तो, और शायद सफल होने के बाद अगर आप नियमित रूप से सुन रहे हैं तो आप इसे महसूस करेंगे, मतलब इतने अखबार और उन अखबारों की आपको क्लिपिंग्स प्रोवाइड करना, उसकी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना उसमें से छांट करके, और यहां तक कि जो अंग्रेजी के अखबार है उनके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में प्रोवाइड करना। मित्रों, मुझे लगता है कि ये छोटा काम नहीं है, काफी मेहनत का काम है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा यह है कि वो इंपॉर्टेंट खबरों की तरफ आपका ध्यान दिला देता है, मतलब आप यूं कह लीजिए कि जो कचरे का ढेर है उसमें से आपके लिए छांट छांट करके जो उपयोगी चीजें होती हैं वो आपको प्रोवाइड करता है। तो मुझे लगता है कि ये काम छोटा काम नहीं है और हम लोगों को बहुत खुशी होगी यदि इस काम से आप लोगों की सफलता में हम लोग थोड़ा भी योगदान कर रहे होंगे। तो उदाहरण के तौर पर कल के दैनिक हिंदुस्तान में इस जो मैं जलवायु निवेश की बात कर रहा हूं, जलवायु निवेश योजना, ये खबर छपी है लेकिन मिडिल पेज पर नहीं है, ये तीसरे चौथे पेज पर जिसे हम सामान्य तौर पर उलट देते हैं उसमें छपी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्टूडेंट के रूप में हम उस पेज पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम फर्स्ट पेज देखते हैं और इसके बाद जो एडिटोरियल मिड पेज होता है सामान्यतः उसको देखते हैं। तो जो अलग दूसरे पेजों में छपी खबरें रहती हैं उनको हम जनरली इग्नोर कर जाते हैं। फिर हो सकता है कि देख भी ले तो हमें जल्दी जल्दी पढ़ने में ये पता ना लग पाए कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, और अगर पता भी लग गया, हमने पढ़ा भी, तो हमने सोचा कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं है। जबकि यही वो आइटम है मुझे लगता है कि जो एग्जामिनेशन में फर्क पैदा करते हैं, क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आप पास होने के लिए परीक्षा में नहीं बैठ रहे हैं। तो उसी में आज कल के दैनिक हिंदुस्तान में आया है जलवायु निवेश योजना, और ये बहुत ही खूबसूरत आइटम है दो दृष्टियों से। नंबर एक, इससे जो जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको रोकने में मदद मिलेगी। दूसरा, इससे हमारे किसानों की आय में वृद्धि होगी। और तीसरा यह भी कि हमें जो बहुत लकड़ियां एक्सपोर्ट करनी पड़ती, लकड़ी फर्नीचर की, क्योंकि भारत में फर्नीचर की लकड़ी के लिए जंगल काटने की आपको इजाजत नहीं है, बहुत कम है, तो हमें बहुत बड़ी राशि, लगभग 45,000 करोड़ रुपए की लकड़ी फर्नीचर की आयात करनी पड़ती, ये हमारा बचेगा। तो ये तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके तहत ये जलवायु निवेश योजना शुरू की गई है। और इसमें कुछ नहीं किया गया है, बहुत ही सिंपल सा है कि जो बेकार पड़ी हुई जमीन है, उस बेकार पड़ी हुई जमीन पर किसानों को बेस कीमती लकड़ियों वाले वृक्ष लगाने की इजाजत दी जाएगी कि आप इन पर वृक्ष लगाइए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब ये वृक्ष बड़े हो जाएं, तब बकायदे आप इन्हें काट भी सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन्हें काट सकते हैं, उन्हें आप बेच सकते हैं, तो इस तरीके से आपकी आय लगातार बढ़ती चली जाएगी। अगर हम इस तरह के बेकार पड़ी जमीन के आंकड़े देखें तो आपको मालूम है कि हमारे यहां जितनी भी जमीन है उसमें से लगभग 60% लैंड ही ऐसा है जिस पर खेती की जा सकती है, यानी कि लैंड एरिया का 40% भाग वो है जिस पर खेती नहीं की जा सकती। तो ये 40% जमीन है, और जिस 60% पर खेती की जा सकती है मोटे तौर पर, उस पर भी पूरे पर खेती नहीं की जाती, लगभग 90% पे खेती की जाती है, तो वो भी 10% है। तो ये तो बंजर जमीन जैसी चीजें हो गई जो खेती के योग्य नहीं है। और इसके बाद फिर आप देखेंगे जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट, अब जहां पब्लिक सेक्टर के जो कारखाने हैं वहां जाकर के देखिए कितनी जमीन खाली पड़ी हुई है, लगभग 10 लाख से भी ज्यादा एकड़ जमीन इस तरह से खाली पड़ी हुई है। कल्पना करके देखिए कि अगर इन जमीन पर इस तरह की बेशकीमती लकड़ियों वाले वृक्ष लगाए गए तो कुछ सालों के बाद इसका कितना जबरदस्त पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जो वृक्ष हैं वो कार्बन को सोखते हैं। तो एक तो कार्बन सोखेंगे, किसानों की आय बढ़ेगी, वातावरण में हरियाली भी होगी, और अभी जो हमारा फॉरेस्ट का जो एरिया है लगभग 22% है, जबकि कहा जाता है कि 33% होना चाहिए, उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। तो ये है जलवायु निवेश योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाने वाली है। मित्रों आइए अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दूं कि आज के करंट कंटेंट में बहुत खूबसूरत आर्टिकल आपको प्रोवाइड किया गया है जो इकोनॉमिक टाइम्स में छपा था, वो है रोजगार निर्माण के मार्ग हैं अनेक। रोजगार निर्माण का मतलब केवल यही नहीं होता है कि सरकारी नौकरी, रोजगार निर्माण का मतलब होता है लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। तो क्या कौन कौन से और तरीके हैं, रास्ते हैं, उसके बारे में आर्टिकल है, इस पर आपको बहुत गौर फरमाना चाहिए। मित्रों मैं आता हूं अब मुख्य विषय पर। मुख्य विषय के बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करने जा रहा हूं, जैसा कि मैंने कहा मैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ तथ्य बताऊंगा, और इसके बाद मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें से आप पॉइंट्स नोट कर लेंगे। देखिए सपोज एग्जामिनेशन में एक प्रश्न आया है मेंस में कि भारत में जो किसान हैं उन पर बहुत ज्यादा दबाव है, वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनकी आय बहुत कम हो रही है, मतलब या यूं कह लीजिए कि भारत में कृषि व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो कृषि व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो इसके लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे। अब देखिए बहुत सरल सा प्रश्न है, पहला तो स्टेटमेंट हो गया कि स्थिति बेहतर नहीं है, फिर वो कह रहे हैं कि क्या उपाय सुझाएंगे। अब देखिए जो हम किताबों में पढ़ते हैं हमारे दिमाग में वही उपाय आते हैं, फिर हम क्या उत्तर लिखेंगे किताबों के आधार पर कि हमारी जो कृषि व्यवस्था ज्यादातर मानसून के ऊपर निर्भर है और अगर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं तो हमारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, हमारे जमीन के टुकड़े छोटे छोटे हैं उन्हें बड़ा बना दिया जाए तो स्थिति बेहतर होगी, हम परंपरागत तरीके से खेती करते हैं अगर उसको साइंटिफिक तरीके से किया जाने लगा तो स्थिति बेहतर होगी, हम यही सब तो लिखते हैं ना, और ये अभी से ही नहीं लिखते आ रहे हैं, सन 70-75 से लिखते आ रहे हैं। लेकिन क्या सच में अभी भी हमें वही लिखना चाहिए? नो डाउट कि यह हमारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इस पूरे के पूरे बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में कुछ नई चीजें भी तो पैदा हो रही हैं और सिचुएशन बदल भी गई है। उदाहरण के तौर पर अब आप देखिए कि अब पॉपुलेशन का दबाव अभी टोटल मिलाकर के तो ज्यादा है लेकिन जनसंख्या वृद्धि की गति बहुत धीमी हो गई है, और दूसरी तरफ जो खाद्यान्न उत्पादन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वही तो प्रॉब्लम है अभी कि खाद्यान्न उत्पादन इतना ज्यादा हो गया है हमारे यहां कि जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है, घरेलू बाजार है, वो उन सबको नहीं पचा पा रहा है, तो खाद्यान्नों की कीमत नहीं बढ़ रही है। जब कीमत नहीं बढ़ रही तो किसानों को नुकसान हो रहा है, किसानों को नुकसान हो रहा है तो या तो वो आत्महत्याएं कर रहे हैं या खेती का काम छोड़ रहे हैं। तो हमारे पास अब नई संभावनाएं क्या है? तो हमें लिबरलाइजेशन के दौर में चीजों को नए तरीके से देखना होगा कि क्या विश्व में हमें संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। मित्रों, इस आर्टिकल में इसको बहुत खूबसूरत तरीके से बताया गया है कि अब जबकि वैश्वीकरण का दौर हो गया है, भारत के कृषि क्षेत्र में कितनी जबरदस्त संभावनाएं उत्पन्न हो गई हैं। जैसे इन्होंने एक आंकड़ा दिया है कि भारत हर साल कृषि क्षेत्र में करीब 4,000 करोड़ डॉलर का निर्यात करता है। 4,000 करोड़ डॉलर, इस 4,000 करोड़ डॉलर में आप 4,000 करोड़ में 70 का गुणा कर दीजिए, $1 के बराबर 70 रुपए, उतने रुपए का निर्यात कर रहा है। और यह जो निर्यात है, सच पूछिए तो अगर हम कपड़ा और वस्त्र यानी कि सिले हुए वस्त्र, सिले सिलाए कपड़ा और वस्त्र को अगर हम मिला दें तो उनसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा निर्यात हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि विदेशों में हमारे जो खाद्यान्न पदार्थ है उनकी मांग है। तो यहां हमें काम करना चाहिए। उन्होंने दिया है कि हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम किस तरह से कृषि क्षेत्र को बढ़ाएं, कृषि क्षेत्र के निर्यात को बढ़ाएं। तो यह ऐसा कैसे हो सकता है? इस आर्टिकल में चार बहुत खूबसूरत और नए उपाय सुझाए गए हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, चार बहुत खूबसूरत और नए उपाय सुझाए गए हैं। वो उपाय किताबों से हट करके हैं जिनकी चर्चा मैंने अभी की है। ये आपको नोट करने चाहिए। मैं केवल नाम गिना दे रहा हूं, आप आर्टिकल से उन्हें नोट कर लेंगे। बहुत स्पष्ट तरीके से इस आर्टिकल में लिखा गया है, क्योंकि वक्त नहीं है तो मैं इसे समझा नहीं पाऊंगा। पहला तो उन्होंने कहा है विशेषज्ञता की, हमें विशेषज्ञता वाली चीजें पैदा करनी चाहिए, यानी कि सारी चीजें पैदा कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि फल और सब्जियों में भारत की विशेषज्ञता है, तो हम उगाए गेहूं और हम गन्ने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, जबकि ये गेहूं और गन्ना दूसरे देश हमसे भी सस्ते में पैदा कर रहे हैं, तो हम उन्हें छोड़ दें। दूसरा, उन्होंने राजनीतिक अर्थव्यवस्था की बात कही है। इसका मतलब है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ इस तरह की नीतियां बनानी चाहिए कि हमारा जो कृषि निर्यात है वो बढ़ सके। ये इसमें डिटेल में इन्होंने समझाया है। तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया है दक्षिण एशिया में व्यापार, हम दक्षिण एशिया के साथ अपने व्यापार बढ़ाएं कृषि के क्षेत्र में भी, क्योंकि वहां परिवहन की लागत कम होगी और वहां हमारी चीजों की मांग बहुत ज्यादा है। फिर चौथा उन्होंने दिया है निरंतर संबद्धता, मतलब लगातार हम बाहर से बने रहे, क्योंकि होता यह कि भारत से जब कोई माल निर्यात किया जाता है अक्सर बीच बीच में आप सुनते होंगे तो किसी कारण से रिजेक्ट हो जा रहा है, फिर बंद हो जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके बारे में लगातार हमें सतर्क रहना चाहिए और इस तरह के संगठन बनाने चाहिए और फिर अपने कारोबारी रिश्तों को बेहतर बनाना चाहिए ताकि हम इससे बच सकें, और ऐसा करके भारत कृषि क्षेत्र में अद्भुत काम कर सकता है। तो देखिए, इन्होंने चार नए उपाय बताए हैं। सिविल सर्विस की सफलता का एक बहुत बड़ा जो रहस्य है, कह लीजिए अगर आप इसे रहस्य कहते हो, इस बात में छिपी हुई कि नई नई चीजें आप कितना ला पाते हैं जो बिल्कुल व्यावहारिक हों, क्योंकि यही बातें एग्जामिनर को इम्प्रेस्ड करती हैं। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। आज बहुत से आपको मैं प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब उसे देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद, और उन्हीं में से तीन दोस्तों के नाम हैं, किरण देशमुख महाराष्ट्र से, सोनी गंगवार बरेली उत्तर प्रदेश से, और अनिरुद्ध दास, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।